स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ इकबाल अहमद। तारीख 14 मई और दिन मंगलवार। श्रीलंका में मुसलमानों के खिलाफ हिंसक वारदातों के बाद कर्फ्यू लगा।
Sinhalese are still coming to attack houses and businesses and setting them up.
गोरखपुर के निषाद समाज के लोगों की चुनाव के बारे में क्या है राय?
क्या सम्मान देने का यही तरीका कि जब 4.5 साल सरकार बीत जाए तब हम घोषणा करें अगली बार आएंगे देंगे? अगर पटेल की प्रतिमा लग सकती है इस देश में, तो महाराज निषाद राज की 80 करोड़ की प्रतिमा लग सकती थी। ये झूठी लॉलीपॉप है।
फनी चक्रवात के दौरान ओडिशा से एक खास रिपोर्ट।
सब द्वारा बंद जा को धक्का मारी के पहली के आ रहा है जीवन में चाहिए बोल।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। श्रीलंका में मुसलमानों की मस्जिदों और दुकानों पर अराजक तत्वों के हमले के बाद देश भर में रात्रि का कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा बल बदले की भावना से किए जा रहे हमलों को रोक रहे हैं। श्रीलंका में ईस्टर रविवार को हुए आत्मघाती हमलों के बाद से ही तनाव व्याप्त है। ये हमले स्थानीय जिहादी संगठन ने किए थे। श्रीलंका में करीब 10% मुसलमान आबादी रहती है। ताजा हिंसा के बाद से मुसलमानों में डर का माहौल है। एक व्यापारी ने बीबीसी को बताया है कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी में भी हमले जारी हैं। चीन के 60 अरब डॉलर कीमत के अमरीकी सामानों पर अतिरिक्त कर लगाने की घोषणा के बाद से ही अमरीकी बाजारों में गिरावट देखी गई है। डाउ जोन्स 2.4% गिरकर बंद हुआ है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो अगले महीने G20 की बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ व्यापारिक तनाव पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने कहा,
We're taking in billions of dollars of tariffs. And those tariffs are going to be,
हम अरबों डॉलर के टैरिफ की बात कर रहे हैं और ये टैरिफ बहुत बड़ा होगा। अगर आप देखें कि अब तक हमने चीन के साथ क्या किया है, तो हमने मेरे चुने जाने से पहले तक चीन से कभी 10 सेंट भी नहीं लिए थे और अब हम अरबों डॉलर ले रहे हैं। इसी शुक्रवार को इसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। ये कर अब 200 अरब डॉलर पर 25% है। हमें आज की हमारी ये स्थिति पसंद है। कुछ जवाबी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो इसकी तुलना में बहुत छोटी होगी। फेसबुक ने स्वीकार किया है कि उसकी मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप में एक सुरक्षा चूक के चलते लोगों के मोबाइल फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। ब्रितानिया अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली कंपनी ने यह सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इस जासूसी सॉफ्टवेयर को व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों के फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यदि कोई यूजर कॉल का जवाब नहीं देता है, तब भी उसके फोन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है। कनाडा के शोधकर्ताओं के मुताबिक इस जासूसी सॉफ्टवेयर से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के इंजीनियर इस सुरक्षा चूक को ठीक करने में रविवार तक जुटे थे। फेसबुक ने ग्राहकों से कहा है कि वो नए वर्जन को अपडेट कर लें। दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। सूडान से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी खरतूम में जारी प्रदर्शनों के दौरान एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है। बीते महीने राष्ट्रपति उमर अल बशीर को पद से हटाए जाने के बाद से ही सैन्य परिषद देश का शासन चला रही है। परिषद का कहना है कि ताजा हिंसा में कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से अंतरिक्ष शोध संस्थान नासा के चंद्र अभियानों के लिए 1.6 अरब डॉलर का अतिरिक्त बजट मांगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर कहा है कि इस अतिरिक्त बजट का इस्तेमाल मंगल अभियान भेजने के लिए भी किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अमरीका को 2024 तक चांद पर फिर से किसी को भेजना चाहिए। वेनेजुएला के अधिकारियों का कहना है कि एक चीनी मालवाहक विमान 71 टन चिकित्सा उपकरण और दवाइयां लेकर राजधानी काराकास पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस राहत सामग्री से अमरीकी प्रतिबंधों का वेनेजुएला के आम लोगों पर असर कम होगा। 2 महीने पहले ही रूस ने भी भारी मात्रा में चिकित्सा सामग्री काराकास भेजी थी। रूस, चीन और तुर्की राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के समर्थक हैं। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। میں ہوں اقبال احمد۔ آج ہے مئی کی 14 تاریخ اور دن ہے منگلوار۔ اس وقت ہو چکے ہیں بھارت میں 6:34:44۔ آپ اس کارکرم کو ریڈیو کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل فون پر بھی لائیو سن سکتے ہیں۔ کارکرم کی شروعات سری لنکا سے۔ سری لنکا میں کئی علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف ہنسا کے بعد وہاں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ راجدھانی کولمبو کے آس پاس کئی مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا اور مسلمانوں کی دکانوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن فی الحال کسی کے ہتاہت ہونے کی خبر نہیں ہے۔ بی بی سی سنواد داتاؤں کی بھیجی رپورٹ کا ساتھ سنیے دل نواز پاشا سے۔
سری لنکا میں پولیس کو اپدروی بھیڑ پر قابو کرنے کے لیے ہوا میں گولیاں اور آنسو گیس کے گولے چلانے پڑے ہیں۔ سوموار کو راجدھانی کولمبو کے آس پاس کے علاقوں اور کئی انیہ قصبوں میں مسلمانوں کی مسجدوں اور دکانوں کو اراجک بھیڑ نے نشانہ بنایا ہے۔ ہنسک گھٹناؤں کے مد نظر دیش بھر میں راتری کا کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ احتیاطاً فیس بک اور واٹس ایپ جیسی سوشل میڈیا ویب سائٹوں اور چیٹ ایپلیکیشن پر بھی روک لگا دی گئی ہے۔ سری لنکا میں ایسٹر رویوار کو چرچوں اور ہوٹلوں پر سلسلے وار آتم گھاتی حملوں کے بعد سے تناؤ ویاپت ہے۔ ان حملوں میں 250 سے ادھک لوگ مارے گئے تھے اور 500 سے ادھک گھائل ہوئے تھے۔ راشٹرپتی میتریپالا سری سینا کے پروکتا شرال لکھتھلاکا کا کہنا ہے کہ تازہ ہنسا کے پیچھے اپدروی گینگ ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ایسی استھتی میں سماج کے کچھ حصے نراش ہیں اور بھاوک بھی ہیں۔ کچھ جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنگٹھت گینگ ایسی وارداتیں کر رہے ہیں۔ سرکار اس ہنسا کو روکنے کے لیے پرتیبدھ ہے اور آج رات سے اس پر قابو کر لیا جائے گا۔ سرکار کا کہنا ہے کہ مسلمان ورودھی ہنسا اور اپدرو کی گھٹناؤں کو روکنے کے لیے ہر سمبھو پریاس کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک ویاپاری نے بی بی سی کو بتایا کہ رات کے کرفیو کے باوجود حملے جاری ہیں۔ ہم نے ان کی آواز بدل دی ہے۔ انہوں نے کہا،
We can see many places where the curfew has been announced. The army is on the streets with guns, but they don't
ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی علاقوں میں جہاں کرفیو گھوشت ہے سینا سڑکوں پر گشت کر رہی ہے، لیکن وہ ہنسک تتووں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں۔ سنہلا گھروں اور دکانوں پر حملے کر رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں۔ سرکاری میڈیا پورا سچ نہیں دکھا رہی ہے، لیکن ہمیں دیش بھر سے مسلمانوں پر حملوں کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ سری لنکا کے مسلمان حملوں کے ویڈیو بھیج رہے ہیں۔ حملوں کے رپورٹوں کے بیچ سری لنکائی پردھان منتری رانیل وکرما سنگھے نے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ایسٹر حملوں کے بعد سے سری لنکائی سماج میں جو درار نظر آ رہی تھی، اب اس نے ہنسک گھٹناؤں کا روپ لے لیا ہے، جنہیں روکنا سرکار کے سامنے ایک بڑی چنوتی ہوگی۔
تو سری لنکا کے بارے میں بتا رہے تھے دل نواز پاشا۔
نمسکار بھارت، شارٹ ویو 49, 41 اور 25 میٹر بینڈ، یعنی 6070, 7290 اور 11995 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر۔
ایک دفعہ پھر سواگت ہے آپ کا بی بی سی ہندی کے کارکرم نمسکار بھارت میں، اور میں ہوں اقبال احمد۔ اور اب بات بھارت پرشاست کشمیر کی۔ بھارت پرشاست کشمیر کے باندی پورہ میں 3 سال کی معصوم بچی کے ساتھ کتھت روپ سے بلاتکار کے خلاف کل یعنی سوموار کو زوردار ورودھ پردرشن ہوا۔ اس گھٹنا نے پوری کشمیر گھاٹی کو جیسے سکتے میں ڈال دیا ہو۔ پردرشنکاریوں نے ابھیوکت کے خلاف سخت سزا کی مانگ کی ہے۔ ورودھ پردرشن کے بعد کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ پولیس نے ابھیوکت کو گرفتار کر لیا ہے اور معاملے کی جانچ جاری ہے۔ سنیے سری نگر سے ماجد جہانگیر کی رپورٹ۔
یہ تھیں بانڈی پورہ کے سنبل علاقے کی کئی مہیلائیں جو 3 ورشیہ معصوم کے ساتھ کتھت طور پر بلاتکار کے خلاف سوموار کو سڑکوں پر پردرشن کر رہی تھیں اور آروپی کو سخت سزا دینے کی مانگ کر رہی تھیں۔ ایک پردرشنکاری آمنہ نے بتایا کہ اب انہیں گھر سے باہر نکلنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے۔
ہماری جو ساری بچیاں ہیں سکول جا رہی ہیں، ہمیں تو اب ڈر لگ رہا ہے کہ کیسے سکول جائیں گی، ہم تو بہت گھبرا گئے ہیں۔
بانڈی پورہ کے سنبل ملک پورہ گاؤں میں 9 مئی کی شام کو 3 سال کی معصوم کے ساتھ علاقے کے ایک یوا طاہر احمد نے بچی کے گھر کے پاس ستھت ایک اسکول کے باتھ روم میں اس گھٹنا کو انجام دیا تھا۔ پیڑتا کے پتا نے بی بی سی کو فون پر اس حوالے سے جانکاری دیتے ہوئے بتایا،
اس لیے ہم وہاں گئے، وہاں نہیں پائی، ہم پریشان ہو گئے، کہاں ہے کہاں سے ڈھونڈیں گے ہم, ڈالر میں مر گئی یا کچھ ہوا. پھر ہم نے اس کو پکارا تو پھر ان کی آواز آ گئی تھوڑی ہلکی سی, منی منی وہ چلا رہی تھی. پھر ہم نے پایا سکول کا باتھ روم ہے, وہی پایا اس کو بری حالات میں.
آروپی کو پولیس نے حراست میں لیا ہے اور تفتیش کو آگے بڑھایا ہے. بانڈی پورہ کے ایس پی راہل ملک نے بتایا,
جو اس بچی کے ساتھ ایکیوز نے جو ہے یہ مس ہیپننگ کی ہے, اور ہی واز کاٹ ریڈ ہینڈڈ ان دیٹ ایکٹ بائی دی نیبرس بائی دی فیملی ممبرس, اور اس کو اسپاٹ سے گرفتار کر کے جو ہے پولیس اسٹیشن میں لایا گیا ہے. اور اس میں ابھی تک ہم نے ایس آئی ٹی جو کنسٹیٹیوٹ کی ہے اس نے اس بچی کا میڈیکل کروایا ہے, اور اس میں ہم نے جو ہے ایس آئی ٹی نے ابھی اس میں فردر انویسٹیگیشن کیری آؤٹ کیا ہے, اسٹیٹمنٹس وغیرہ ریکارڈ کیے ہیں.
پردرشنوں کی لہر اس سمے اور زیادہ تیز ہو گئی جب یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ آروپی کو اسکول کے ایک پرنسپل نے فرضی پیدائشی سرٹیفکیٹ جاری کر آروپی کو مائنر ثابت کرنے کی کوشش کی. سنبل علاقے کے ایک پردرشنکاری محمد اسلم نے بتایا,
ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دی جاتی ہے اور ان امیڈیسی اس سرٹیفکیٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ جو یہ کلپریٹ ہے یہ صرف 9 اور 10 فورتھ کلاس کا بچہ ہے.
پولیس کا کہنا تھا کہ پرنسپل کو حراست میں لیا گیا ہے. ایس پی ملک,
جس نے بھی یہ جو ہے اپلوڈ کیا ہے جو اسکول کا پرنسپل ہے اس کو ہم نے پولیس اسٹیشن میں ڈیٹین کیا ہوا ہے, اور اس بجائے جو بھی لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے جو بھی اسکول کو رن کر رہا تھا جو پرنسپل اس نے ایشو کیا اس کو ہم نے یہاں پہ ڈیٹین کیا ہے.
حالانکہ آروپی کے پتا نے بی بی سی کو فون پر بتایا کہ ان کے بیٹے پر لگے آروپ جھوٹے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹے پر جو آروپ لگے ہیں وہ جھوٹے ہیں. یہ دراصل زمین اور مکان کا ایک وواد تھا. پیڑتا کے پریوار نے جو بیان دیا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر میرے بیٹے کو قانون دوشی پاتا ہے تو انہیں جو بھی سزا ملے گی مجھے اس پر کوئی آپتی نہیں ہوگی. یہ تھے آروپی کے پتا کے شبد. کشمیر کے الگ وادیوں اور عام دارے کے راجنیتک دلوں نے بانڈی پورہ کی گھٹنا کو نندنیہ بتایا ہے. اتحاد المسلمین نامی سنگٹھن نے سوموار کو کشمیر بند بلایا تھا جس کی وجہ سے کشمیر میں عام جن جیون است ویست ہو کر رہ گیا. کئی جگہوں پر پردرشنکاری دھرنے پر بیٹھے تھے جنہیں تتر بتر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور ٹائر گیس کے گولے داغے جس میں کئی یوا گائل ہو گئے ہیں. پولیس نے بچی کی فورنسک جانچ کروائی ہے جس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. ماجد جہانگیر, بی بی سی سری نگر.
اور اب بات لوک سبھا چناؤ کی. گورکھپور کو اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کا گڑھ مانا جاتا ہے, لیکن سال 2018 میں گورکھپور سیٹ پر ہوئے اپ چناؤ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا. لیکن تب سماجوادی پارٹی کے ساتھ آئی نشاد پارٹی نے اب بی جے پی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے. سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی نے گورکھپور سے رام بھوال نشاد کو امیدوار بنایا ہے اور بی جے پی نے ابھینیتا روی کشن کو ٹکٹ دی ہے. بی بی سی سنواداتا کلدیپ مشر نے گورکھپور میں نشاد سماج کے لوگوں سے بات کی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس چناؤ کو وہ کیسے دیکھتے ہیں.
اس وقت ہم ہیں گروستم پور, یہ جگہ ہے گورکھپور کی جہاں یہ نشاد مندر ہے. بہت سارے نشاد سماج کے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. یہاں نشاد ووٹ بڑا نرنائک سمجھا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو پترکاروں اور جانکاروں کا ماننا ہے کہ 3.5 لاکھ سے زیادہ نشاد ووٹر یہاں ہیں اور وہ نرنائک استھتی میں ہوتے ہیں. نشاد پارٹی نے اس بار بھاجپا کے ساتھ گٹھ بندھن کیا ہے. یہاں وہی نشاد پارٹی جو کہ اس سے پہلے جو اپ چناؤ ہوا تھا اس میں وہ سپا بسپا گٹھ بندھن کے ساتھ تھی. اس چناؤ میں سپا بسپا گٹھ بندھن نے رام بھوال نشاد کو ٹکٹ دیا ہے. تو اب نشادوں کے سامنے یہ دوند ہے کہ وہ سپا بسپا گٹھ بندھن کے اپنے سجاتی امیدوار رام بھوال نشاد کو چنیں یا پھر نشاد پارٹی کے پرتی اپنی پرانی پرتیبدھتا کو دہراتے ہوئے بھاجپا کے ساتھ جائیں. جبکہ بھاجپا نے یہاں سے بھوجپوری سنے ستارہ روی کشن شکلا یہاں سے بھاجپا کے چناؤ میدان پہ ہیں. یہ جو مندر جس سمیتی کا ہے اس سمیتی کے ادھیکش بھی ہمارے ساتھ ہیں. نشاد ووٹر کیا سوچ رہا ہے اس بار؟
نشاد ووٹر اس بار ایک دم سنبھلا ہوا ہے. نشادوں کی پہلی بار سمسیا جان لیجیے کیا کیا مولبھوت سمسیاں کیا. نشاد میں 75% لوگ آج بھی مول شکشاؤں سے آدھاربھوت سے ونچت ہیں.
بڑی بات ہوئی خاص طور سے اپ چناؤ کے بعد کہ نشاد اور بسپا اور سپا ان تینوں کے کور ووٹروں نے مل کر کے یوگی آدتیہ ناتھ کے گڑھ میں بھاجپا کو ہرا دیا. इस बार ये समीकरण तो है नहीं, क्योंकि निषाद पार्टी चली गई है भाजपा के साथ। चुनाव में क्या असर है इसका?
इसका सीधे सीधे चुनाव में असर है। जो आरक्षण के मूल मुद्दे पर निषाद पार्टी का यहाँ से इसी मंदिर से उदय किया गया था, इसी मंदिर के संगठन के बल पर यहीं से मंदिर से निषाद पार्टी का एक तैयारी करके भेजी गई थी कि हमें आरक्षण के मुद्दे पर मिलना चाहिए। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वही कमिश्नर साहब के आवास में उन्होंने कहा था कि मैं संसद से लेकर सड़क तक आपकी लड़ाई लड़ूंगा, मगर जब उनको सत्ता में आ गए, जब उनको अधिकार देना हुआ, तो ये खामोश बैठ गए।
अदर स्टेटों में जो है हम लोग का कास्ट जो है SC में आता है, अनुसूचित जाति में, लेकिन उन्होंने यहाँ से बोला था कि हमारा एक संगठन, बहुत बड़ा संगठन SC में जाएगा और इस आरक्षण दिलवाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर के उनका जो पार्टी का संगठन बना था, लेकिन वो क्या किए, उनका चुनाव जीतने के बाद से ये मुद्दा भूल गए और दूसरी बात फिर भाजपा में विलय कर लिए। आप देख सकते हैं उनका जो कैंडिडेट है उनका कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं रहा है। रवि किशन की बात कर रहे हैं, वो एक कलाकार हैं और उनका हम सम्मान भी करते हैं बतौर एक कलाकार के तौर पर। हमारा जो प्रतिनिधित्व करेगा और हमारा वोट उसको जाएगा।
एक अमित शाह का बयान है अभी निषाद राज केवट की सिंगवेरपुर में,
80 करोड़ की प्रतिमा लगाए,
80 फुट की, 40-50 करोड़ उसमें खर्चा होगा। आप पे असर है उस बात का? आपको लग रहा है कि सम्मान अब भाजपा दे रही है आपको?
क्या सम्मान देने का यही तरीका कि जब 4.5 साल सरकार बीत जाए तब हम घोषणा करेंगे अगली बार आएंगे देंगे? अगर पटेल की प्रतिमा लग सकती है इस देश में, तो महाराज निषाद राज की 80 करोड़ की प्रतिमा लग सकती थी। ये झूठी लॉलीपॉप है। संजय निषाद ने एक बहुत बड़ी गलती की है। आप किसी पार्टी में गए हैं, एक चीज जरा बताइए कि उस पार्टी में जाने के बाद निषाद सिंबल पर चुनाव न लड़के उनका एक टिकट कहीं अगर निषाद की पार्टी से चुनाव लड़ा हो, जब उनका अस्तित्व ही नहीं है, उनके पार्टी का सांसद नहीं होगा, तो वो जिस पार्टी में बैठे हैं उस पार्टी के सांसद से अधिकार मांगेंगे?
हमें नहीं उम्मीद है कभी ये भाजपा हमारा हित करेगी।
क्यों ऐसा लगता है?
भाजपा अपना हित सोच रही है, हमारा हित नहीं करेगी कभी।
आप लोगों को एक राजनीतिक चेतना, उसको उभारने में डॉक्टर संजय निषाद की बड़ी भूमिका रही, लेकिन अब संजय निषाद आपको कह रहे हैं कि चलो भाजपा के साथ, तो आप लोग उनसे भी अकड़ के कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे?
उनका जो मुद्दा था निषाद पार्टी का, उन्होंने संगठन छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए। आपके BJP के मुख्यमंत्री भी हैं, 5 साल से सेंट्रल में भाजपा की सरकार रही है, उसके बावजूद हमारा कोई हित नहीं हुआ है। और एक डॉक्टर संजय से सबसे बड़ी शिकायत ये है कि उनका एक संगठन, उनका पारिवारिक सिर्फ है, उन्होंने सिर्फ अपने फैमिली तक रखा है।
और अब चलते हैं झारखंड। झारखंड की सियासत में मुसलमान इन दिनों हाशिए पर हैं। इस चुनाव में किसी भी बड़ी पार्टी या गठबंधन ने किसी मुस्लिम को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। साल 2014 के आम चुनाव में भी यहां से कोई मुसलमान सांसद नहीं बन सका था। झारखंड विधानसभा में भी सिर्फ 2 मुस्लिम विधायक हैं। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने से क्यों परहेज करती हैं राजनीतिक पार्टियाँ, और झारखंड के मुसलमान इस स्थिति को लेकर क्या कहते हैं? सुनिए रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
झारखंड की कुल आबादी का करीब 15% होने के बावजूद यहां की सियासत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नाम मात्र का है। राज्य के कुल 14 मौजूदा लोकसभा सदस्यों में से एक भी मुसलमान नहीं है। साल 2000 में अलग झारखंड राज्य बनने के बाद कांग्रेसी नेता फुरकान अंसारी वैसे इकलौते मुस्लिम थे जिन्हें सांसद बनने का मौका मिला। उनके बाद किसी भी मुस्लिम को न तो लोकसभा जाने का मौका मिला और न राज्यसभा। इससे मुसलमानों का एक वर्ग खासा नाराज है। चर्चित पत्रकार MS आलम कहते हैं कि मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी नहीं देना गलत है।
ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या ये नॉन BJP पार्टियां हैं, इनकी सोच ये है कि मुस्लिम जाएगा कहाँ। इस स्थिति में क्या होता है कि मुस्लिम के लिए कोई चांसेस बचता ही नहीं है कि वो जो है सीट निकाल पाए। जब मुस्लिम जाएगा कहाँ वाला सवाल उठ जाता है, तो उस स्थिति में जो है मुस्लिम के टिकट मिलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जैसे इस बार जो है पूरे झारखंड में कहीं भी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला।
झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में अभी सिर्फ 2 मुस्लिम विधायक हैं। दोनों एक ही पार्टी कांग्रेस से चुने गए हैं। झारखंड अलग होते वक्त यहां 5 मुस्लिम विधायक थे। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या घटकर 2 हो गई। साल 2009 में हुए चुनाव में सिर्फ 3 मुस्लिम विधायक बने। वे या तो कांग्रेस से जीते या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर। भाजपा ने पिछले 19 साल के दौरान यहां से किसी भी मुसलमान को विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया। झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आलमगीर आलम कहते हैं कि भाजपा मुसलमान विरोधी पार्टी है, वह मुसलमानों को टिकट क्यों देगी?
कांग्रेस पार्टी का सभी को लेकर चलने के अपना एक परंपरा है, उस परंपरा को निभाएंगे। लेकिन वो इस बार का परिस्थिति कुछ ऐसा था जिसमें इस बात को स्पष्ट कहा गया कि राज्यसभा का पहली सीट जो है माइनोरिटीज को दिया जाएगा, कि हम लोग कम से कम माइनोरिटीज को अधिक से अधिक नॉमिनेटेड करने के लिए कोशिश हम लोग करेंगे, ताकि लोगों को लगे कि माइनोरिटी का भी जन भागीदारी है।
झारखंड भाजपा के प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने दावा किया कि भाजपा जाति और कौम की राजनीति नहीं करती है।
भारतीय जनता पार्टी न तो कभी मुसलमान, न कभी दलित और न कभी आदिवासियों का राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ चलती है।
अच्छा सर, तो हम लोग ये उम्मीद करें कि जो विधानसभा का चुनाव होगा या भविष्य में जो भी चुनाव होगा तो मुसलमानों के पार्टिसिपेशन में भाजपा उदार रहेगी, टिकट उकट देगी?
निश्चित तौर पे, जहाँ पे अगर वो मजबूत है हमारे पार्टी में अगर है और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम जरूर उनको आगे लाएंगे, लेकिन इसके पहले सभी मुसलमानों को भी हम पर विश्वास करना पड़ेगा।
मुस्लिमों की सामाजिक संस्था अंजुमन इस्लामिया के झारखंड प्रमुख इब्रार अहमद मानते हैं कि मौजूदा वक्त में मुसलमान राजनीतिक तौर पर मजबूर हो चुके हैं, अब हमें यह देखकर वोट देना होता है कि हमारे लिए कम हानिकारक पार्टी कौन है।
सबसे बुरा चीज तो ये हो रहा है कि मुस्लिम जो है माने इनकी कोई भागीदारी जो है सत्ता में नहीं है, लेकिन निशाना इनको बनाया जा रहा है जगह जगह पे। अब लोगों को ये लग रहा है कि सत्ता और सरकार कुछ भी हो जाए लेकिन समाज में जो नफरत फैलाया है ना, इससे बहुत परेशानी हो रही है लोग।
झारखंड में 50 लाख से भी अधिक मुसलमान रहते हैं। पाकुड़ और साहिबगंज जिले में इनका प्रतिनिधित्व कुल आबादी का करीब 30% है। देवघर, जामताड़ा, लोहरदगा और गिरिडीह जिलों में यह औसत 20% है। बाकी जिलों में मुस्लिम आबादी अपेक्षाकृत कम है। इसके बावजूद गोड्डा, चतरा, लोहरदगा और राजमहल लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। फिर भी सियासत में मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। उम्मीद है कि सियासी पार्टियां आने वाले वक्त में इन सवालों का जवाब ढूंढ लेंगी। रवि प्रकाश, BBC रांची।
और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है। दिलनवाज बताएं क्या कहते हैं अखबार आज के।
जी इकबाल, अभी आखिरी चरण बाकी है, नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उसमें बयानबाजी अखबारों की सुर्खियां बन रही है। सैम पित्रोदा का हुआ तो हुआ बयान अभी भी अखबारों की सुर्खी में है। अमर उजाला लिखता है हुआ तो हुआ अब बहुत हुआ मोदी, और वहीं राहुल गांधी ने कहा है पित्रोदा को शर्म आनी चाहिए, सार्वजनिक माफ़ी मांगे, और जनसत्ता ने भी इसी से जुड़ी सुर्खी में बनाई है नामदार को शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कल मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, उससे जुड़ी हुई खबरें अखबारों में दिख रही हैं। मेरे हाथ में पंजाब केसरी है जो बता रहा है अमित शाह और ममता में टकराव, कोलकाता आ रहा हूं, हिम्मत है तो अरेस्ट कर लेना अमित शाह ने कहा, और रैली रद्द, हेलीकॉप्टर लैंडिंग की मंजूरी नहीं मिली अमित शाह के हेलीकॉप्टर को, ये और योगी की रैली भी रद्द हो गई है पश्चिम बंगाल में, तो ये आज का पंजाब केसरी बता रहा है। मेरे हाथ में इंडियन एक्सप्रेस है जिसकी लीड रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जारी है और तेहरान ने यानी ईरान ने अपने विदेश मंत्री जावेद जरीफ को भारत भेजा है, वो सुषमा स्वराज से आज मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रामीण क्षेत्र हैं भारत के वहाँ पर अर्थव्यवस्था धीमी रही है और इसे रफ्तार देने के लिए राहत पैकेज की ज़रूरत पड़ सकती है, ये एक विशेष रिपोर्ट बता रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने जो एम्यूनिशन यानी गोला बारूद है उससे हो रहे हादसों को लेकर चिंता जाहिर की है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक पबजी जो एक पॉपुलर गेम है उसने भारतीय सैनिकों खासकर CRPF केंद्रीय सुरक्षा बल जो हैं उनके जवानों को लत लग गई है और उनकी नींद तक ख़राब कर दी, और CRPF को एक आदेश जारी करके कहना पड़ा है कि पबजी ना खेलें और जवानों के फ़ोन से पबजी फ़ोन हटाया जा रहा है। वीडियोकॉन ICIC लोन केस में पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति से ED ने 9 घंटे पूछताछ की है, ये खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। दक्षिण भारत की राजनीति का जिक्र करेंगे, स्टालिन ने KCR से मुलाकात की है लेकिन कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे ये कहा है, ये खबर आज द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित की है। और एक और खबर कई अखबारों के पहले पन्ने में पर है, फरीदाबाद के एक पोलिंग बूथ का वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद पीठासीन अधिकारी और एजेंट को गिरफ्तार किया गया।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक ख़ास रिपोर्ट, उड़ीसा में पिछले दिनों आए फणी तूफान में कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई। राजधानी भुवनेश्वर के कई इलाकों में आज भी बिजली नहीं है, बिजली अगर जाती है तो बस चंद घंटों के लिए। तूफान का सबसे अधिक प्रकोप पुरी में रहा। वहां सबसे अधिक मौतें हुई हैं। सैकड़ों ने अब भी सरकारी कैंपों और दूसरी जगहों पर शरण ले रखी है। 3 मई को जब तूफान अपना कहर बरपा कर रहा था तो पुरी के विड़ी पोड़िया गांव के दलितों को अछूत बताकर सरकारी शिविर में शरण की जगह दुत्कार मिल रही थी।
आखिर पनाह उन्हें अंतिम सांसें गिन रहे एक पेड़ ने दी।
सब द्वारा बंद जाको धक्का मारी करी पेली करी आरे आरे में जीवन बचाइबो।
सब दरवाजे बंद थे, हमने दरवाजों पर धक्का मारा और मिन्नते की, कहा आप लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। किसी ने हमें जगह नहीं दी, हरिजन है ये कहकर दुत्कार दिया।
विनीता गुछायत की आवाज बात करते करते बीच बीच में भर्रा जाती है। पास ही ईंटों को जोड़कर बनाए गए चूल्हे पर कड़ाही में आलू उबल रहा है। वहीं बरगद के एक गिरे पेड़ के तने की एक तरफ धरा है अल्मीनियम का एक घड़ा, जंग लगी एक साइकिल और ढीले अस्थि पंजर वाला एक फोल्डिंग टेबल। जड़ से उखड़ गए बरगद का यही पेड़ पिछले हफ्ते भर से विनीता गुछायत और दूसरे 2 दलित परिवारों का आशियाना है। वहीं रह रहे हैं त्रिनाथ मलिक।
जब हमने 2 तारीख की शाम सुना कि तूफान आ रहा है, हम लोग स्कूल चले गए। वहाँ लोगों ने हमें घुसने नहीं दिया, कहा तुम डोम हो, तुम्हें हम जगह नहीं दे सकते।
बीडीपोडिया गांव का स्कूल तब साइक्लोन सेंटर के तौर पर काम कर रहा था और गांव के काफी लोग यहाँ प्रशासन के कहने पर या खुद से शिफ्ट हो चुके थे। एक कमरा बड़ी गुहार के बाद इन दलित परिवारों को दिया तो गया, मगर दूसरों से अलग, पक्के कमरों से दूर। पर इस बिस्टर की छत 200 किलोमीटर की रफ्तार से भी तेज आंधी का सामना भला कब तक कर पाती। विनीता गुछायत बताती हैं,
पड़े अभी तेरे स्कूल घर से तेरे भांगी गला पोटा बारंडा छत तो ला गया,
छत टूट गई थी। हम 10-15 लोग बरामदे की छत के नीचे दुबक कर बैठ गए। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें बचा लो। जब हवा तेज हुई तो हम 15 आदमी वहीं बरामदे में बारिश से तरबतर होकर खड़े हो गए।
स्कूल में एक जगह लिखा है छुआछूत कानूनी जुर्म है, मगर जब दलितों ने आवाज उठाई तो उन्हें धमकियां मिली। रीला मलिक।
मजबूरन मुझे धक्के दे देकर दरवाजा तोड़ना पड़ा। हम में झड़प हुई, उन्होंने थाने में शिकायत करने की धमकी दी। हमने सोचा अगर सचमुच में मामला दर्ज हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। एक दिन खाते हैं तो दूसरे दिन भूखे मरते हैं।
तिनके तिनके होकर बिखर गए आशियाने और सूख रहे इस बरगद के दरख्त के आसपास आज खुशियों का हल्का सा झोंका महसूस किया जा सकता है। 6 दिनों के बाद गुरुवार को भात जो बना है सरकारी मदद के नाम पर प्रति व्यक्ति किलो भर दिए गए चावल से तैयार। त्रिनाथ मलिक और उनके कुछ साथी बाजा बजाने का काम करते हैं।
उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध देव जगन्नाथ की प्रशंसा में गाया गया भजन। इन लोगों को दूसरे मंगल अवसरों पर भी गाने बजाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन भेदभाव और छुआछूत तब भी खत्म नहीं होता।
दलितों के साथ छुआछूत की घटना को लेकर पूरी कलेक्टर बलवंत सिंह कहते हैं,
कोई इस तरह का केस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में नहीं है, और आप अगर आपको किसी ने बताया है और बताते हैं, वी विल बी टेकिंग इट अटमोस्ट सीरियसनेस के हिसाब से। वी हैव एवरी ह्यूमन बीइंग इज प्रेशियस फॉर मी।
उड़ीसा में 19वीं सदी में एक भयंकर अकाल आया था, जिसके बाद एक सरनेम छतरखिया कुछ लोगों के नाम के आगे लगाए जाने लगा। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने सभी के साथ बैठकर सरकारी शिविरों में खाना खाया था। लगता है 150 से अधिक सालों में कुछ भी नहीं बदला। फैसल मोहम्मद अली, BBC, पूरी उड़ीसा।
और अब प्रमुख समाचार।
श्रीलंका में मुसलमानों की मस्जिदों और दुकानों पर अराजक तत्वों के हमलों के बाद देश भर में रात्रि का कर्फ्यू लगा दिया गया है। चीन के 60 अरब डॉलर कीमत के अमरीकी सामानों पर अतिरिक्त कर लगाने की घोषणा करने के बाद से ही अमरीकी बाजारों में गिरावट देखी गई है। फेसबुक ने स्वीकार किया है कि उसकी मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप में एक सुरक्षा चूक के चलते लोगों के मोबाइल फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। ब्रितानिया अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली कंपनी ने यह सॉफ्टवेयर विकसित किया है। सूडान से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी खरतूम में जारी प्रदर्शनों के दौरान एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से अंतरिक्ष शोध संस्थान नासा के चंद्र अभियानों के लिए 1.6 अरब डॉलर का अतिरिक्त बजट मांगा है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।